इसके बाद आगे देखिए, सूरत मुमतहिना इम्तिहान लेने वाली। इसमें बैत करके, जो बैत का जिक्र है वो औरतें जो मुसलमान होती थी तो अल्लाह के नबी किन किन बातों की बैत लेते थे। पहली 9 आयतें और फिर उसके बाद आयत नंबर 13, इनको जमा कीजिए तो अहले ईमान की कुफार के साथ दोस्ती और मोहब्बत की मजम्मत है। असल में एक वाक़या है इनके पीछे। खातिब बिन अबी बलता बड़े मुखलिस सहाबी थे, ग़ज़वे बदर में भी शरीक हो चुके थे। जब अल्लाह के नबी ने मक्का की तरफ जाने का इरादा किया सन 8 हिजरी में, तो इन्होंने मक्का वालों को एक ख़त लिख दिया, अपनी तरफ से एक एहसान जतलाया कि देखो मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो अगर कोई जंग छिड़ी तो तुम मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कहना जो कि मक्का में है। अल्लाह के नबी की दुआ थी कि अल्लाह ताला इस जंग का वक्त से पहले ना पता चले, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि बहुत बड़ी जंग हो और मक्का की हुरमत पामाल हो। खामोशी से जाकर टेक ओवर करना चाहते थे। अल्लाह ने वही के ज़रिए ये आयतों में बता दिया कि ये राज तो खुल चुका है। यानी इससे भी ये समझिए कि ये जब कोई चीज़, कोई राज हो, कोई किसी का की ऐसी चीज़ जिसको नहीं एक्सपोज करना, तो उसको अगर खोल दिया जाए तो ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह की निगाहों में। और ख़ास तौर पे फिर नबी के साथ ऐसा मामला जब किसी से हो जाए। ज़ाहिर तो सारे हालात खातिब नबी बलता के ख़िलाफ़ थे कि उनके अंदर से ईमान चला गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ 2 लोगों को लगाया कि जो रोहा मुकाम पर एक औरत के पास से तुम्हें ये ख़त मिलेगा वो लेकर आओ। हज़रत अली का इतना ईमान था अल्लाह के नबी पे कि अगर आपने एक जगह का नाम लिया ना तो औरत वहीं मिलेगी, बीच में नहीं रुके ना इधर उधर रहे। अल्लाह करे हमारा भी इतना ईमान हो जाए आपकी हदीस पे। खैर, वो औरत मिली, उसने अपने बालों की मीडियो में ख़त छुपाया हुआ था, लेकर आए। ख़त पढ़ा तो वो ख़त क्या था, वो तो हातिब के ख़िलाफ़ एक कह लीजिए कि बहुत फर्दे जुर्म थी कि ये क्या हो गया उनसे। खैर, उमर फ़ारूक तो हमेशा ईमान में बहुत आगे थे, वो कहने लगे अल्लाह के नबी ये तो गद्दारी है, हम इनको कत्ल कर देते हैं। कहा नहीं उमर, ऐसा नहीं करो, बुला के लाओ। खैर, हातिब को बुलाया गया, एक बेहतरीन लीडर। कैसे अच्छे लीडर तस्फिये कराते हैं, कैसे होती होती जंगों को रोकते हैं, कैसे फूट पड़ती हुई चीज़ों को, टीमों को जोड़ते हैं, ये सीखने की बातें हैं। और जो माँ अच्छी होती है ना उसके बच्चे कम लड़ते हैं। और इसी तरह से याद रखिए कि सासें, जो सास बड़ी समझदार हो ना, बुज़ुर्ग हो, कुछ लोग बड़े हो जाते हैं बुज़ुर्ग नहीं होते, जो बुज़ुर्ग सासें ना उनकी बहुएं भी नहीं लड़ती। और जहाँ भी किसी इंस्टीट्यूट में आ जाइए, मसा आप किसी कॉलेज में काम करते हैं, किसी स्कूल में टीच करते हैं, प्रिंसिपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। हालांकि वो काम कुछ नहीं करता, लेकिन वो काम करवाता कैसे है, ये चीज़ आपको इससे दिखती है। और अल्लाह के नबी का इससे खूबसूरत, यानी अल्लाह के नबी से ज़्यादा खूबसूरत मिसाल नहीं। आपने मामला ठंडा किया जब हातिब अपनी सफाई पेश कर सके कि अल्लाह के नबी मैं कुफर पे नहीं हूँ, ना निफाक है, ना मेरा ये यकीन है कि अगर मैं पहले से मक्का वालों को बता दूंगा तो आप के ख़िलाफ़ वो तैयारी करें, मेरा ईमान है आप ही जीतेंगे। देखिए, बल्कि ये हातिब के ईमान की गवाही बन गई। फिर अल्लाह के नबी की ये बात सस्फी हुई, तो इससे क्या पता चलता है कि बीवी बच्चों की मोहब्बत बाज़ दफ़ा इंसान को गलत काम, और वो ऐसा काम भी कि जो उसको सूट नहीं करता, उसके काबिल कर देती है। इससे बचने की कोशिश भी करनी चाहिए और ख्वाहिश भी रखनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि आगे आयत नंबर 10 से 11 में अहम और पेचीदा माशरती मसले का फ़ैसला किया गया। उस दौर में मसला ये था कि ट्रांजेक्शन चल रही थी इधर से उधर, उधर की इधर, तो फतह हुदैबिया की सुलह में एक शर्त थी कि कोई शख्स अगर मुसलमान हो जाता है मक्का में रहने वाला, तो उसको मदीना में नहीं आने दिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। अब मामला उससे ऑपोजिट हो गया, मर्द तो नहीं, कुछ औरतों को अल्लाह ने इस्लाम की हिदायत दी, वो मक्का से मदीना आ गईं, तो मक्का वालों ने शोशा उठा दिया कि जी ये तो वापस होंगी। एग्रीमेंट खोल कर देखा तो उसमें औरतों का नाम नहीं था। बस उस सारे ट्रांजेक्शन को, यहाँ औरतों के इधर के मेहर, उधर के मेहर लेकर, मैं जब भी आयतें पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह, जो लोग सिर्फ कुरान हानि के तौर पे कुरान को पढ़ जाते हैं वो इन आयतों को क्या कर रहे हैं, और जिस सिर्फ बेटी की शादी पे सर पे रखते हैं उन्होंने इन आयतों की ज़रूरत क्या थी फिर कुरान में। इतनी पेचीदा आयतें, उसका शौहर, उसकी बीवी, उसका मेहर, उसको दे दो, उससे ले लो, ताकि किसी पर भी जुल्म ना हो। तो ये कुरान किताब हिदायत है, हमारी ज़िंदगी के माशरती मसाइल के फ़ैसले करती कराती है। फिर आयत नंबर 12 में ख़वातीन की बैत है जो अल्लाह के नबी के सामने करती थी। और याद रखिए, अल्लाह के नबी हाथ में हाथ लेकर बैत नहीं करते थे। आपने तो कभी किसी औरत के हाथ को, गैर महरम को छुआ नहीं, बल्कि ये बैत मुख्तलिफ तरीक़ों से होती थी। ये अल्लाह के नबी तक मुकय्यद थी, अब ये पूरी हो गई, तो लिहाजा उसमें चोरी ना करने, जिना ना करने, औलाद के कत्ल से रुकने और इसी तरह मारूफ कामों के करने का हुक्म था। अल्लाह ताला हम सब को भी ऐसे ही अच्छे मुसलमान बनाए। हिदायत में से, इस सूरत में से जो आयतें हमारे सामने एज आ गाइडलाइन, वो है आयत नंबर 8 और 9, 8 से 9, जिसमें फिर दोबारा उसी लोगों के हालात को सामने रखकर जिन जिनके साथ ये मामला चल रहा था, अल्लाह ताला ने कहा ला यन्हा हुकुम, ला यन्हा कुमुल्लाह अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम, जिन लोगों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की और तुम्हें जिला वतन नहीं किया, इनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ इन लोगों से की मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला और तुम्हारे निकालने में औरों की मदद की। तो जो ऐसे लोगों से दोस्ती करेंगे वही जालिम हैं। अल्लाह अकबर, किस क्लियर कट मैसेज के साथ सूरत पूरी होती है। अगली सूरत सफ है। सफ नाम से पहले सौफात सूरत गुजरी और यहाँ ये क्या बताता है? डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। और की हकीकत यह है कि एक मोमिन बहुत ही ज़्यादा बहुत ऑर्गेनाइज होता है और उम्मत मुस्लिमा को आज इसकी बहुत ज़रूरत है। कामयाबी में ऑर्गेनाइज होने और डिसिप्लिन होने का बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वो सुपर पावर्स हों, चाहे वो दीन का कोई मामला हो। ना दुनिया की तरक्की मिलती है इसके बगैर, ना दीन की। आयत नंबर 1 से 4 में गलबा दीन हक के लिए जिहाद की दावत है, लेकिन अंदाज तरहीब का है। रहब, राना, देखिए दो स्टाइल हैं कुरान के, तरगीब और तरहीब, रगबन व रहबन। ज़रा सा अंदाज सख्त है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालों तुम क्यों वो कहते हो जो तुम करते नहीं हो। कबुरा मक़तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, बहुत ही बुरा है अल्लाह की नज़र में जो तुम कहो और फिर करो ना। तो कौलो फ़ेल का तज़ाद नहीं होना चाहिए। और अल्लाह को जो लोग पसंद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न का नहुम बुनजानुम मरसूस, सीसा पिलाई दीवार बन जाओ, अल्लाह को फिर अच्छे लगोगे। तफरकों को छोड़ो, फितनों को छोड़ो, इख्तलाफात को छोड़ो, ग्रुप विद इन ग्रुप को छोड़ो, और सीसा, वो कहते हैं लोहा लाठ हो जाओ अल्लाह के दीन के इस्तीफा में। तो आपको मुझे भी दीन इस्लाम की इमारत में अपने आप को फिट करना है और दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे इसकी बुनियादें बना दे, क्योंकि जो लोग बुनियादों में होते हैं ना उनको बड़ा दर्द होता है, वो गिरने नहीं देते उस पर इमारत को, उस पर नाम नहीं आने देते। बहुत सारे लोग बाद में ऊपर एक फ्लोर बना लेते हैं, अच्छा यहाँ दीवार निकाल दें, आप किराएदारों को देखिए घर दे दें, कभी कुछ कर देंगे कभी कुछ, लेकिन जो खुद मालिक होता है और जिसने एक एक चीज़ खुद बनाई हो, वो कहता है आप इधर एक कील भी नहीं लगा सकते। दीन के काम की ऐसी हिफाजत करेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल रहेगी। अगर हर चीज़ हर एक को करने की इजाज़त दे दी जाए, चंद दिन बाद तो असल रूल्स ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आज उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पे इसको सामने रखना है, ताकि हम चाहते हैं कि लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के इस्लाम का नमूना बनकर दिखाएं। फिर आयत नंबर 5 से 8, तारीख़ बनी इसराइल के 3 अदवार हैं। गलबा दीन हक के लिए जिहाद से एराज का बतौर इबरत बयान है कि कैसे उन कौमों ने, हज़रत ईसा बिन मरियम की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की भी बात है, कि कैसे ये लोग अल्लाह के नबी को उस दौर में नहीं समझ सके, उनका साथ नहीं दे सके, और फिर अल्लाह ताला ने इन कौमों को इसकी सज़ा क्या दी। फिर आयत नंबर 9 में अल्लाह के नबी का मकसद बेसत गलबा दीन हक, जिसको हम हिदायत में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर 10 से 13, गलबा दीन हक के लिए जिहाद की दावत, बड़ी खूबसूरत रगबत का अंदाज़ है। पहले क्या था? तरहीब, अब है तरगीब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजी अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या ईमान वालों, क्या तुमको एक ऐसी तिजारत ना बताऊँ जो तुमको जो दर्दनाक अजाब से निजात दे दें। फिर आगे उसकी कैटेगरीज हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे भी ऐसी ही खूबसूरत तिजारतें अल्लाह ताला के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, और हम बेहतरीन तरीके से वो काम करें कि जिसके बाद जन्नत में दाखिल हो सकें। और नसर मिन अल्लाह व फतहुन करीब, बबशिरिल मोमिनीन, एक एक जुमला बड़ा प्यारा लगता है। फिर इसके बाद आयत नंबर 14, जो 14 नंबर आयत है सूरत की आखिरी आयत, उसमें है या अय्युहल्लज़ीना मनुकूनु अंसारुल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ। ईसा बिन मरियम का ये जुमला था, मन अंसारी लल्लाह, कौन अल्लाह के रास्ते में मेरा मददगार? तो हवारियों ने कहा नाहनु अंसारुल्लाह। 3 दफ़ा एक ही आयत में कूनु अंसारुल्लाह, मन अंसारी लल्ला और नहनु अंसारुल्ला, बस जिंदगी का खुलासा है ये। आप चाहते ना आपको बुढ़ापा अच्छा हो, आप मुतमईन होके मरें, आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड हो, इसमें कहीं खप जाए, या दूसरों को दावत दें कि आइए मेरी अल्लाह के रास्ते में मदद करें। हम तो कभी ना लें, हम कहते नहीं तो बाहर का बंदा इससे क्यों मदद लें, ये तो हमारे फिरके का नहीं मसलक का नहीं, हम कच्चा पक्का टूटा फूटा काम कर लेंगे, किसी दूसरे से मदद नहीं लेंगे। वजह कैसे फिर लोगों को पता चल जाएगा कि हमें ये काम करना नहीं आता, और हम क्यों किसी दूसरे को नाम लें बीच में। अल्लाह हू अकबर। फिर इसी तरह से आप देखिए कि या मदद मांग लीजिए या कह दीजिए हम अंसारुल्लाह। दुनिया के हर टाइटल से बड़ा टाइटल है अंसारुल्लाह। तो हर बंदा जिसको अल्लाह ने ये टॉपिक ये टाइटल दिया है वो सर सजदे में रखे कि अल्लाह मुझसे ये वापस ना लेना। एक दफ़ा ये टाइटल लेने के बाद वापस मिल जाए ना तो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा काम करते करते बंदा गिरे, फिर लोग अंसार अल्लाह नहीं वो अंसार शैतान ही बन जाते हैं, और अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा मामला ना हो। फिर इसके बाद आप देखिए कि बनी इसराइल की बातों के बाद क्या कह दिया आखिर में, कैफायत नल्लसीना मन वाला दुविहिम फस बहू ज़ाहिरीन, बस हमने कुव्वत दी उन लोगों को जो ईमान लाए उनके दुश्मन के मुकाबले में, बस वो हो गए उनके मददगार। तो क्या पता चला? ये पता चला कि दीन के अंदर गलबा अल्लाह ही की तरफ से होता है। हिदायत में आयत 9 से 12 है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। तीसरी बार ये आयत आई है कुरान में, सूरह तौबा में पढ़ी थी, सूरह फतह में पढ़ी थी, और अब यहाँ पढ़ें, क्योंकि पूरे दीन का खुलासा भी यही है कि आपकी ज़ात से शुरू होकर दीन गालिब हो, नाफिज हो, आपके बच्चे, आपका घर, आपका मुल्क, और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा हो, क्योंकि ये दुनिया अल्लाह का घर है। अल्लाह कह वलिल्लाह ही मुल्क समावात वल अर्थ, तो जिसका मुल्क होता है उसी के नाम का झंडा लगता है। ये तो अल्लाह का ज़र्फ है बड़ा बुलंद, वो तो परवाह नहीं करता वरना किसी एक का झंडा ना लगने दे, और वो भी कुफर के साथ और अल्लाह ताला की नाराज़गियों के साथ। तो आपने मैंने इस गलबा दीन में हिस्सेदार बनना है इंशाल्लाह। फिर वो तिजारत जिसके दावे किए गए जिसमें वाकई कभी नुकसान नहीं होता, और ये वो तिजारत है जिसमें सब कुछ भी खप जाने इन्वेस्ट करते हैं। मशवरा दे रही हूँ आपको भी, खुद को भी यही देती हूँ, इस तिजारत में बेच के ना सब कुछ तो लगा दें। आपने देखा होगा कभी बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो मियाँ कहते हैं बेगम मैं तुम्हारा जेवर बेच के इसमें इन्वेस्ट कर दूँ, देखना 1 साल बाद तुम्हें नई चूड़ियाँ बनवा दूंगा। बेगम भी खुश हैं कि चलो वो तो पुराना डिज़ाइन था अब नया ले लूँ। फिर कभी वो बनती हैं कभी वो भी नहीं रहती, लोग घर बेच बेच कर दूसरे मुल्कों के वीज़े लगवाते हैं। कोई एक इस आयत पे लब्बैक कहते हैं, अल्लाह मेरा आना पाई, मेरी एक एक चीज़ इस गलबा दीन में लगवा दे और डाई एम्प्टी की कैफियत मेरी कर दे, मैंने खाली हाथ मरना है, मैंने एक पैनी पीछे नहीं छोड़ के जानी। जब इस दर्जे पे उम्मत मुस्लिमा सोचने लगती है ना, फिर दीन गालिब होता है, फिर अल्लाह ताला इसके बहुत सारे रास्ते बनाता है, और अल्लाह हमें इसमें सीमट बना ले, बजरी बना ले। आगे सूरह जुमा है, बीवी बच्चों की मोहब्बत 5 दफ़ा नमाज से जुमों से फारिग कर देती है। सहाबा कराम एक जुमे के नमाज के दौरान एक कंसाइनमेंट के आने के दौरान बशरी तकाजे से ज़रा से वहाँ से हिले, अल्लाह ने पूरी उम्मत को पैगाम दिया कि तुम ऐसा न करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनूज़ा नूदियलिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, ये है जिसकी वजह से इसको यौम सूरह जुमा कहते हैं। पहली 4 आयतें देखें, इज्तमाए जुमा की हकी हिकमत, कुरान का पढ़ना पढ़ाना और उसकी अहमियत, हर हफ्ते में एक बार क्यों जमा करते हैं अल्लाह ताला लोगों को। देखिए ना, हर रोज़ की जमा है 5 वक्त की नमाजें, बेस्ट आइडियल सिचुएशन, आइडियल सोसाइटी तो यही है। हफ्ते में एक दफ़ा कुछ और लोगों को मिलना है तो वो है जुमा, और पूरी दुनिया में एक दफ़ा तुम्हारा एका हो जाए तो वो है हज। ये सारा कुछ अल्लाह ताला क्यों करता है, क्यों बताता है आपको मुझे, ताकि उम्मत को जुड़ना आ जाए। आजकल जुमे पे पाबंदी है, बड़े सवाल है, क्या सोचना चाहिए आपको मुझे इस वक्त, और हमारे मर्दों और बेटों और भाइयों को क्या पैगाम देना है हमने, कि नियत कीजिए कि जो ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो मस्जिदें खोलें, खुतबे से पहले बल्कि मस्जिद में सबसे पहले जाने वाले नमाजियों में बने, किसी स्पीकर से ऐसे क्वेश्चन आंसर्स लोग कर रहे थे, तो बड़ी प्यारी बात उनकी लगी। लोगों ने यही सवाल किया, और ख़ास तौर पे अब जो इशू चल रहा है ईद का, नमाज का, और दूसरा, इंशाल्लाह हम आपके साथ भी इसको शेयर करेंगे इन्हीं एक आध दिनों में, ईद से पहले। तो उन्होंने पूछा लोगों ने कि जी ईद की नमाज़ ये वो, और जुमा नहीं जाने पढ़ने दे रहे, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, और झगड़े हो रहे हैं, और जज्बातियत। तो उनका जुमला सुन लीजिए जो कहने लगे कि ये सारे मसले वो लोग पूछ रहे हैं जो आते ही आखिरी रकत में थे। खुतबा तो कभी शायद ही सुना, वो तो आते ही तो सिर्फ जी दो फ़र्ज़ पढ़ के आ जाएं, उनको इतनी फ़िक्र पड़ गई है। फ़र्ज़ नमाज़ें छुटें तो छुटें, सुन्नतों के पीछे बाज़ दफ़ा। अब ईद की नमाज़ फ़र्ज़ तो नहीं है ना, लेकिन उसके लिए देखिएगा फिर, अल्लाह रहम करे ईद के दिन ना कहीं झगड़े हो जाए मुसलमान मुल्कों में, और अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। तो बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन सिखाती हैं ये इबादत हमें। फिर आयत 5 से 8 में तौरात से मुतल्लिक जिम्मेदारियों से यहूद का एराज और इसकी वजह। जब कौमों को इल्म मिले, अल्लाह किसी भी एक को दे या पूरे गिरोह को दे, और उस इल्म का हक अदा न करें, यानी उसको अमल में कैश न करवाएं, तो उनकी मिसाल कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारन। बस खुद ही जाके इसका तर्जमा किसी तर्जमे वाले कुरान से पढ़ लीजिए। आयत का नंबर बोल देती हूँ, आयत नंबर 5 है सूरह जुमा। अल्लाह को सजती है ये बात कहते हुए, मुझे आपको नहीं सजती, लेकिन अपने लिए ज़रूर समझें कि क्या मुझे जो अल्लाह ने इल्म दिया ये सिर्फ बोझ तो नहीं है मेरे ऊपर, अमल में अगर ना ढाला तो। फिर आयत 9 से 11 अहकामाते जुमा, यानी अहकामात और आदाब जुमा, कि जुमे की नमाज के दौरान किसी किस्म की तिजारत जायज़ नहीं, मस्जिद में जाकर बात करना जायज़ नहीं, और इसी तरह के खूबसूरत अहकामात। इस सूरत में से हमारे सामने आयात हैं हिदायत नामे के तौर पे 5 to 8। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मलह लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारन बेसा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। मिसाल इन लोगों की जिन पर तौरात की जिम्मेदारी डाली गई, फिर उन्होंने जिम्मेदारी को नहीं निभाया, यानी जिम्मेदार गैर जिम्मेदार बन गए। गधे की मिसाल कैसी है जिसने किताबों का बोझ उठाया हो, बुरी है मिसाल उस कौम की जिसने अल्लाह की आयात को झुठलाया, और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। ए नबी आप कह दीजिए, ए लोगों जो यहूदी हुए हो, अगर तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दीगर लोगों के सिवा, तो आरजू करो मौत की अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फिर इसके बाद आयत यही आगे कंटिन्यू होती हैं, वला यतमन्नौहु अबदं बिमा कद्दमत अयदीहिम, ये हरगिज़ आरजू ना करेंगे मौत की बस सबब इन आमाल के जो उन्होंने आगे भेज रखे हैं, और अल्लाह ताला जालिमों से खूब वाकिफ़ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, यकीनन वो मौत जिससे तुम गुरेज करते हो, तो बेशक वो तो तुमसे मिलने वाली है, फिर तुम लौटाए जाओगे जाहिर और पोशीदा के, जानने वाले अल्लाह ताला की तरफ, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। अल्लाह अकबर।